ओम शांति। आज की मुरली की सबसे सुंदर पॉइंट माताओं से पूछेंगे, ठहरो भाई नहीं बोलेंगे, भाई कलश माताओं को है, भटकना बंद करो। ये बहुत अच्छी बात थी, 8 घंटा याद। भाइयों को क्या अच्छा लगा? यही लगा राजीव, 8 घंटा याद। क्यों? सबसे सुंदर गुह्य बात है ये कि 8 घंटा याद करने वाले संसार में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे और इससे जग परिवर्तन सहज होगा। संसार को बदलना है, केवल संदेश देने से संसार नहीं बदलता। संदेश देना तो एक बाह्य काम है, आत्माओं को पवित्र बनाना है, जो देव कुल की आत्माएं हैं उन सबको पवित्र बनाना है। और बाबा ने कहा था पीछे, इस संसार में पवित्रता की क्रांति आ जाएगी, वो समय भी बहुत जल्दी समीप आएगा। तो हम सभी बहुत ध्यान दें, पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर देव कुल की पवित्र आत्माओं को बाबा के समीप लाना है, खींचना है उसे, आकर्षण होगा उनको हमारी पवित्रता के वाइब्रेशन से। तो बहुत बड़ी सेवा, संसार में जो दुख शांति फैली है, देखो आजकल सेंटर्स में जितने लोग ज्ञान लेने आते हैं वो ज्ञान के प्यासे हैं, इसलिए नहीं आते। क्यों आते हैं? बहुत दुखी हैं, बहुत अशांति है, बहुत टेंशन है, मानसिक रोग हैं, उनके समाधान के लिए बाबा के पास आते हैं। अगर हम उन्हें समाधान नहीं दे पाते, कई जगह बहनें ऐसी उनको नहीं आता, वो समाधान नहीं दे पाती, वो यही कहेंगे योग करो, बाबा को याद करो, इसे काम नहीं चलेगा। तो हमें पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं। पवित्रता क्या साथ लेकर आती है? सुख शांति। पवित्र वाइब्रेशंस जब संसार में फैलते हैं, इससे पवित्र वातावरण बनता है और अनेक आत्माएं निष्पाप होने का संकल्प करती हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है, उन्हें अपने पापों की रियलाइजेशन होती है और वो पापों से मुक्त होने का सोचती हैं। सबको घर ले जाने के लिए पवित्र बनाना होगा, तो बहुत बड़ी सेवा है। पवित्रता और शांति की किरणें फैलाना, कौन कौन चाहेंगे आप में से ये महान कार्य करना? सोच लो अच्छी तरह, अच्छी तरह सोचो। 8 घंटे योग की बात है, क्योंकि बिना ऐसे योग के तो आत्मा पवित्र बन नहीं सकती। कोई सोचे हमने तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, काम हो गया, ये तो पहला कदम है केवल, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। संपूर्ण पावन बनने के लिए 4 घंटे से ज्यादा योग होना ही चाहिए। अभी ये आप बताओ, बैठ के करेंगे या खड़े होके करेंगे? बोलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जो जितना बैठे, पर कोई सोचे मैं 8 घंटे रोज बैठूं, न तो योग लगेगा, न शरीर साथ देगा और न ऐसा करना है। योग बैठने का विषय नहीं है, सीधी सी बात। बहुत बार सब कह चुके हैं हम भी और बाबा भी, लेकिन फिर भी माताओं का ही प्रसन्न रहता है, बैठना ही है क्या? और पहला ही संकल्प हो जाता है, नहीं बैठ सकते छोड़ो ये टेंशन, हो जाता है ना, कोई बैठ ही नहीं सकता 8 घंटे रोज। योग एक श्रेष्ठ स्मृति है, स्मृति स्वरूप होना योग युक्त होना है। अब योग के साथ हम दूसरा शब्द जोड़ दें, योग युक्त होना। केवल योग करने वाले नहीं, योग युक्त जीवन वाले। कई लोग योग करते हैं लेकिन अंतर्मुखी नहीं हो पाते, नम्र चित्त नहीं हो पाते, क्रोध और अहंकार को छोड़ नहीं पाते, तो वो योगी नहीं है। उनकी शक्ति जो योग उन्होंने किया, मान लो 4 घंटे बैठे, इनमें नष्ट हो गई। तो योग युक्त जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप, इच्छाओं की कमी, मांसान से बहुत दूर, संकल्पों की भागदौड़ समाप्त, इच्छाएं कम हो जाएंगी, किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ ऊपर से मिलने लगता है। गीत था ना, क्या चाहिए और जब भगवान मिल गया। नम्रता, निरहंकारिता, डिटैचमेंट, बहुत पवित्रता, ये सब लक्षण है योग युक्त जीवन के। अगर किसी को बार बार टेंशन रहे, अगर कोई बार बार झगड़ते रहे, सेवाओं में टकराव होता रहे, यदि स्वभाव चिड़चिड़ा रहे, तो योग युक्त जीवन नहीं है। इसको टेंशन भी नहीं बनानी है। कई लोग सोचते हैं 2 बजे उठेंगे, उठते हैं फिर क्या करते हैं, बाबा के रूम में सो जाते हैं जाके। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में भी 2-3 को लगन लगी जल्दी उठना, कई ने तो सोचा निद्रा जीत बनना, रात को सोना ही नहीं है, तो बाबा के रूम में जाके सो जाते थे। अच्छी नींद आती है ना बाबा की गोद में, तो इससे नहीं। देखिए, ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जो सिंपल हो और प्रैक्टिकल हो। 2 ही दिन उठें 2 बजे, 3रे दिन 6 बजे उठें, इससे नहीं कुछ होगा। बिल्कुल जो बाबा ने दिनचर्या दी 3:30, किसी को ज्यादा काम है थकान है 4, खींचातान की जरूरत नहीं, टेंशन की आवश्यकता नहीं, सहज जीवन, सहज स्वभाव और सहज योग, तीनों को जोड़ देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। तो अब हम सहज जीवन, सरल स्वभाव, सहज स्वभाव और सहज योग, तीनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसको कर्म से जोड़ना है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं, सवेरे उठ के योग करते हैं। बहुत सब भाई बहने मधुबन में तो अच्छा करते ही हैं। चलो जो नहीं करते उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन कई योग को क्या होता है, वे 4 बजे बैठे योग में, 4:45 योग पूरा हुआ, अब योग की छुट्टी, बाबा को छुट्टी दे देते हैं, अब तुम भक्तों के पास जाओ, है ना? ये नहीं, हमारा योग चालू रहे। 4:45 बजे हम यहीं से तो उठ गए ना, लेकिन कमरे तक जाते या चाय पीते या स्नान करते, कुछ अच्छे अभ्यास चालू रहे। आज की इस बाबा की मुरली के इस महावाक्य के अनुसार, मैं लाइट हाउस हूँ, पीस हाउस हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इसका अभ्यास सवेरे के समय चालू रहे, 5 बजे से 8 बजे तक भी। जिनकी सेवाएं हैं सवेरे, कईयों की सेवाएं हैं, वो सेवा करते हुए ऐसे कुछ अभ्यास चालू रखें। तो बाबा ने आज तक योग की जो भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं, सरल विधि है, वही अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। लेकिन इसका ही बहुत विस्तार है, अपने को आत्मा समझना माना स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करना, देह अलग मैं अलग। बहुत बार मुरलियों में शुरू में आया अव्यक्त में, उठते ही संकल्प करो मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई बाबा को मदद करने के लिए। चिंतन भी और ऐसा स्वरूप देखना भी कि मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतर रही हूँ, आ गई भ्रकुटी के बीच बैठ गई, महान कार्यों के लिए आई हूँ। संकल्प देंगे अच्छे अच्छे, संसार में शांति स्थापना के लिए अवतरित हुई हूँ, बाबा के साथ मुझे भी सबको पावन बनाना है, ये संकल्प ये है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस, श्रेष्ठ स्मृतियां, ये भी योग है। तो योग में न खींचातान, न टेंशन, न केवल एकाग्रता, लेकिन श्रेष्ठ चिंतन। एकाग्रता को कोई समझते हैं केवल बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को लगा देना, उसमें खिंचातान होने लगती है। एकाग्रता का दूसरा भी अर्थ है बाबा के प्रति या स्वयं के प्रति ही संकल्प करना, मन इसके अलावा कहीं न जाए। जैसे मुरली में एकाग्रता माना, मुरली के अलावा विचार इधर उधर न भटके, ये एकाग्रता हुई मुरली के समय। कर्म में एकाग्रता किसे कहते हैं, जो कर्म कर रहे हैं उसको पूरी एकाग्रता के साथ करें, मन बुद्धि इधर उधर न भटक रही हो। अब हमें जोड़ना है दोनों को, कर्म भी और योग भी। कुछ कर्म सबके जीवन में ऐसे हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी है, नहाना धोना है, खाना खाना है, चाय पानी पीना है, शरीर से संबंधित कर्म रोज हमें करने हैं, कई कई बार करने हैं, उसमें हमारी बुद्धि नहीं लगती, मन नहीं लगता, लेकिन मन इधर उधर भटकता है। इस भटकन को रोकने के लिए मन को कोई सुंदर विचार देंगे तो वो श्रेष्ठ स्मृति में रहेगा और उसकी भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी साधना सभी कर लें, साधना इसका अर्थ ही है मन को साध लेना, मन को साध देना, इसको भटकने से रोक देना, साध हो इसे, समझ रहे हैं ना। तो इसका सहज तरीका, इसका तरीका ये नहीं कि जबरदस्ती मन को जाने न दे कहीं, उसे काम नहीं चलेगा। मन को जितने मन पसंद विचार देंगे मन उतना ही शांत होगा। अब मन के मन पसंद विचार कौन से हैं, जिससे वो तृप्त होता है, जिससे वो आनंदित होता है, कौन से विचार हैं वो? स्वमान के विचार, मुरलियों से आए हुए विचार, ये मन की खुराक है, ये मन के मन पसंद विचार हैं, इससे मन स्थिर हो जाता है। तो गीत में बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा नशा रहना चाहिए। जिनको योगी बनना है वो कुछ थोड़ी थोड़ी बातों की धारणा करें। एक है ईश्वरीय नशा। कौन सा नशा? पहला पहला कौन मिला, इससे बड़ा नशा तो कोई नहीं है। बाबा मिला, भगवान मिला, तो साथ में क्या क्या लाया, बोलो क्या क्या लाया? श्रेष्ठ ज्ञान लेकर आया। हथेली पर क्या लाया? स्वर्ग की सौगात लेकर आया, अपना संपूर्ण प्यार लेकर आया हमारे लिए, लाया या नहीं? हमें पवित्र बनाने का वरदान देने आया, पवित्र बना दिया, वरदान लेकर आया है हमारे लिए, शक्तियों के साथ आया है हमारे पास, ये मेरी सब शक्तियां तुम्हारी। हम गॉडली स्टूडेंट हो गए और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान। साकार मुरलियों में बहुत बार आई है ये बात, नशे में रहो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं। ये नशा संकल्पों को शांत कर देगा और तब योग बहुत अच्छा लगेगा। खींचातान नहीं, मैं बार बार ये शब्द बोलूंगा, खींचातान नहीं, नींद छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नींद शरीर के लिए टॉनिक है, आवश्यक है। हेल्दी लाइफ के लिए अच्छी नींद परम आवश्यक है और 6 घंटे तो होनी ही चाहिए। और जो युवक हैं कम आयु के, वो सोचे हम तो 4 घंटे ही सोएं, नहीं काम चलेगा, 7 घंटे। क्यों? एक बढ़ा दिया मैंने, आप सो रहे थे कम कर देंगे, बढ़ा दिया। क्यों? छोटी आयु में नींद की ज्यादा आवश्यकता होती है, ब्रेन के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए। 25 साल तक अवश्य ध्यान देंगे। आप अगर नींद को काटेंगे तो कहीं ना कहीं देह का, ब्रेन का विकास प्रभावित होगा। इसलिए अच्छा आहार और अच्छी नींद, ये गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सभी ध्यान देंगे, उनको पता है जिनको नींद कम आती है क्या हाल होता है। कईयों को अनुभव होगा नींद का सुख भी। सुख है या नहीं? सुख है, वो भी बहुत बड़ा सुख है। वो उनको पता जिनको नहीं आती, जो रोज अच्छी तरह खराटे लेके सोते हैं, उनको पता नहीं नींद का भी कुछ सुख होता है क्या, गए और सो गए। ये सबसे अच्छी चीज है। तो खींचातान नहीं, ईश्वरीय नशा। अब योग में हम किन किन चीजों को काउंट कर लें जो 8 घंटे हो जाए। आप बैठेंगे सवेरे और शाम, बैठना भी आवश्यक है एकाग्रता के लिए, कुछ अच्छे चिंतन के लिए, और एकांत भी परम आवश्यक है। एकांत, मैं कुछ धारणाओं की बात कर रहा था, अब सेकंड धारणा हो गई एकांत, और उसमें अच्छा चिंतन। ईश्वरीय नशा, एकांत, उसमें अपने से बहुत अच्छा चिंतन। और तीसरी बात मैं कहूंगा, मधुबन में तो बिल्कुल सहज है, जिनको लगन हो उनके लिए साधन है बहुत, 10-10, 15-15 मिनट 3-4 बार योग में बैठा जाए एकाग्रता के लिए, अच्छा अभ्यास के लिए। ये नहीं बाबा के रूम में जाना है बस, वहां जाके क्या करना है ये हमें पता होना चाहिए। वहां जाके बैठ गए, बाबा को देखते रहे, बाबा से 2 बात कर ली, ये सिंपल चीज है। लेकिन हमें वहां क्या करना है बैठ के? हम कर सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा तपस्या में बैठा है, जुड़ा हुआ है शिव बाबा से, वैसे ही मैं, जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है वैसे ही मैं। बाबा के फोटो से भी हम प्रेरणा ले लेते हैं बहुत अच्छी। नेक्स्ट धारणा, पसंद है बैठ सकते हैं, प्लान बनाना ही चाहिए। घरों में भी जो बहुत बिजी हैं, 10-10 मिनट आप 3 बार भी बैठेंगे, मिनिमम 2 बार। जो भाई लोग हैं कामकाज में हैं, मिनिमम 2 बार अवश्य बैठना है, 15-20 मिनट। उसमें अच्छे अभ्यास करो ऐश्वर्यी होने का, फरिश्ते स्वरूप का, अपने 5 स्वरूपों का। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा, जिनको योगी बनना है उन्हें दैहिक दृष्टि से बाहर निकलना है। दिखाई देह देता है, 5,000 साल का अभ्यास है देह को देखने का। किसी के देह का आकर्षण होता है, किसी के देह को देख के बुरी वृत्तियां होती हैं। इन सब से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से कोई योगी नहीं बन सकता। इसलिए जिसको अच्छा योगी बनना है, कुछ दिन हरेक के मस्तक में चमकती हुई मणि देखने की प्रैक्टिस कर लें। चाहे वो आपके बच्चे ही हैं छोटे, आपके 8-10 साल के बच्चे हैं, माँ को इम्प्योरिटी की बात नहीं, लेकिन उन्हें आत्मा देखेंगे तो उनका जो मोह आपको आकर्षित करके नीचे लाता है वो छूट जाएगा, एक आत्मिक स्नेह बन जाएगा। इस बात का सभी ध्यान दें, मोह को हटाना है आत्मिक प्रेम से। इसके बिना मोह को हटाएंगे तो जीवन सूखा हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी जीवन में, सूनापन आ जाएगा, खालीपन लगेगा, आत्मिक प्रेम, सबको आत्मा देखेंगे, ऑटोमेटिकली आत्मा से प्यार होगा और हमारा योग बहुत अच्छा लगने लगेगा। नेक्स्ट धारणा योगियों के लिए अंतर्मुखता। हमारे यहाँ तो स्लोगन नहीं लिखा रहता था, अभी भी है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या करो। तो ये कुछ धारणाएं हैं जिन पे हम जितना ध्यान देंगे हमारा योग उतना ही सहज होता जाएगा। क्या क्या चीजें हम योग में गिनेंगे, बिल्कुल किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अशरीरीपन के भिन्न भिन्न अभ्यास, मुरलियों से आप ले सकते हैं। अगर तुम ये अभ्यास भी करते हो कि ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब मुझे देह छोड़कर घर वापस जाना है, ये भी मन मना भव है। ये अभ्यास, खेल पूरा हुआ, जाना है। कुछ दिनों में तो ये धुन ही लगानी पड़ेगी सबको, जब दिखाई देगा खेल पूरा होने लगा है। ऐसे ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना, ये भी योग है। अर्थात आत्मा के पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। सब जानते हैं पांच स्वरूपों को, ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र हो गया। ये बहुत सुंदर योग है, आत्मिक स्वरूप है। इसमें स्वमान भी आ गया, श्रेष्ठ स्मृतियां भी आ गई। स्वमान में स्थित होना, उसके चिंतन में रहना, ये भी योग का ही एक हिस्सा है। आप अगर चिंतन करें मैं विश्व कल्याणकारी हूं, इसकी फीलिंग में आए, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे सबको सुख के, शांति के, प्रेम के वाइब्रेशंस देने हैं, देखो कैसी सुंदर फीलिंग होगी। और ये याद रखें सभी, जैसी स्मृति वैसे स्थिति। श्रेष्ठ स्मृति जितनी होगी उतनी ही महान स्थिति बनती जाएगी। आप चिंतन में लाएं, मैं पूर्वज हूँ, मुझे सभी आत्माओं की पालना करनी है, जैसे बाबा सबकी पालना करते हैं मुझे भी सबकी पालना करनी है। आनंदित स्थिति हो जाएगी। बाबा ने अव्यक्त, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, उस पे यहाँ हम लोगों ने चर्चाएं भी की थी, जैसे बाप ने तुम्हारी पालना की है अब तुम दूसरों की पालना करो। ये बात, समान स्थिति हो जाएगी। ये चिंतन, ये भी योग के अंतर्गत आ जाएगा। ये अशरीरीपन के, आत्मविमानी होने के अभ्यास हैं सब। अब है हमें स्वयं को बाबा से जोड़ना है। केवल अशरीरी होने से काम नहीं चलेगा। कई लोग सोचते हैं बस आत्मविमानी हो गए, हो गया काम, ये नहीं, ऊपर भी जुड़ना है। और पहला उसका स्वरूप जो रोज हम सब गीत गाते हैं, राजीव बाबा मेरा है, गहरी फीलिंग है, कहने की बात नहीं। गीत तो बहुत अच्छे बने हैं इस पे, वो भी एक गीत है ना, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ये गीत बजते लोग डांस करने लगते हैं, प्यार की फीलिंग है ना बाबा से। लेकिन इसको बिल्कुल ऐसा आप ले लें अपने विचारों में कि बाबा मेरा है, ये अपनापन बढ़ते चले। जैसे आप सभी के परिवारों में आपके बच्चे, पति, माँ बाप मेरे हैं, ये कैसी फीलिंग रहती है, सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसे ही बाबा भी मेरा है, बहुत गहराई में इसकी हम चलेंगे तो ये सुंदर योग हो जाएगा, आत्मा को मग्न करने वाली चीज हो जाएगी। सेकंड चीज लें इससे जुड़ी हुई, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, उसकी प्राप्तियों को याद करेंगे तो मन उसके प्यार में मग्न हो जाएगा। और ये बहुत गहरा बाबा का महावाक्य, जो बहुत सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हैं वो इसको भी अपने योग का आधार बना सकते हैं। एक बाप के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है वो एक बाबा के प्यार में मग्न हो सकते हैं। मन अगर अनेकों के प्यार में भटक रहा है तो ज्ञान की कमी है। चिंतन करेंगे इस पे, तो बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, बहुत प्यार पैदा होगा। और ये सब अब बाबा के आने तक हमें करना है। एक हफ्ता बचा है, 6 दिन है, बहुत अच्छी तरह ये सब योग अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। और चलें इस योग में आगे, नोट कर रहे हैं जो करते जाएं, और इसको कर्मों के साथ जोड़ देना है, इस कर्म में ये अभ्यास, इस कर्म में ये अभ्यास। अब हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे बाबा से मिलन मनाने। वहां बाप दादा हैं दोनों, ऐसा समझ लें ये सूक्ष्म लोक जैसे भगवान के कार्य करने का बहुत बड़ा ऑफिस वहां उसने खोल दिया है, ऑफिस खोल दिया है। बहुत सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं, फरिश्ते, सूक्ष्म शक्तियां बाबा के साथ रहती हैं, जो उन्हें उसके कार्य में मदद करती हैं। वो किसी का भी आह्वान करके कहीं भी भेज देता है, जाओ ये कार्य करो वहां। तो सूक्ष्म लोक में हम चलेंगे और बाप दादा को देखेंगे सामने, उनका बहुत डिवाइन स्वरूप, दिव्य रूप, मस्तक में चमकते हुए ज्ञान सूर्य, दृष्टि लेंगे। ये बहुत सुंदर अनुभूति है, बाबा से जी भर के दृष्टि लेंगे, बाबा का हाथ सिर पर, वरदान दिया बाबा ने इसकी अनुभूति करेंगे, तिलक लगाया बाबा ने, गले लगाया बाबा के साथ, डांस करें, प्यार की फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग को यहां बढ़ाएंगे। कभी यहीं से बाबा के साथ सारी सृष्टि को सकास दें। दिखाया करते थे बाबा सीन, बाबा ने बुलाया सबको ऊपर और कहा सामने गोला है, धरती का गोला, ग्लोब कहते हैं ना इंग्लिश में, काला हो गया है, अब सभी इसको सकास दो। तो सभी के मस्तक से किरणें निकलकर ग्लोब पर बढ़ने लगी और देखते देखते ही ग्लोब काले से रंग बदलने लगा और बदलते बदलते गोल्डन हो गया। तो बाबा सिखाते थे कि इस तरह तुम्हारी सकास से ये संसार सत्यु में बदल जाएगा, सतो प्रधानता आ जाएगी, वहां ये काम करें, फिर चलें परम धाम में। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, बाबा के पास, उसकी किरणों के नीचे, उसका गुणगान भी करें, उसको याद नहीं दिलाएंगे बाबा तू प्यार का सागर है, बाबा कहेगा मैं थोड़ा ही भूल गया हूँ, मैं तो हूँ। हम अपने को याद दिलाएंगे, वो जो मेरा परम पिता है, सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है, सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर, उसका प्यार मेरे लिए है। फील करेंगे उसकी किरणें आ रही हैं, उसकी किरणें हम में समा रही हैं कुछ देर, फिर मैं आत्मा वापिस आ गई देह में, और फिर बहुत अच्छा अभ्यास कि उसके ऊपर से किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तो कभी शांति की किरणें, कभी पवित्रता की, कभी शक्तियों की, जैसे ऊपर से किरणें पड़ रही हैं, बरसात जैसी हो रही है और दुनिया में फैल रही हैं। ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। और कभी और दूसरे दो तीन अभ्यास मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो आप इन 6 दिनों में कर लें बहुत अच्छा, और कोशिश करें कि वो आपकी नेचर बन जाए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं और ऊपर से ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें आ रही हैं। ये बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, मैं कई बार याद दिला चुका हूँ यहाँ, और मैं भी याद करता हूँ, आप सब भी याद करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस नशे में स्थित होकर यदि किसी को भी दृष्टि देंगे तो उनकी दूषित वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। सबको अनुभव करने हैं, आने वाले समय के लिए ये अनुभव वरदान सिद्ध होंगे। पापी लोग आपके सामने आएंगे, दृष्टि पड़ते ही चरण छूकर निहाल होकर वापस जाएंगे। ये अभ्यास बहुत बढ़ाना है, हमें किसी को शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। कैसे देने हैं? सिंपल तरीका, मैं पीस हाउस हूँ, शांति की अवतार हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ। ये कोई भी संकल्प लेकर आत्मा देखकर दृष्टि देंगे तो हमारी दृष्टि से शांति के वाइब्रेशंस उन्हें मिलने लगेंगे। हमें किसी को शक्तियां देनी हैं, सिंपल ऐसी विधि, मैं माइट हाउस हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति में स्थित होकर दूसरे को आत्मा देखेंगे तो हमारी शक्तियां उन आत्माओं को जाने लगेंगी। ये अभ्यास भिन्न भिन्न तरह से हमें करना है, और दो बहुत सरल योग के अभ्यास जो कर्मों में करते रहना है। एक तो बिल्कुल सिंपल, बाबा मेरे साथ है, नशा, हम अकेले हैं ही नहीं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और कभी उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है तो कभी उसकी 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है। आधे आधे मिनट के ये अभ्यास हैं, ये नहीं आप सोचें इसको हमें घंटों करना है। ये स्मृतियां हैं, ये ईश्वरीय नशे हैं, ये हमारी खुमारी है। आधा आधा मिनट कर लेंगे तो ये नशा चढ़ जाएगा और ये साथ का अनुभव बढ़ता ही जाएगा। आप सभी में से कई भाई बहने करते होंगे बाप दादा का आह्वान, कौन कौन करते हैं? बहुत अच्छा, सभी किया करें और ज्यादा बार किया करें। माताएं जब अपने घरों में हैं, अपने घर में बाप दादा का आह्वान करो, भोग अवश्य लगाएं, रोज लगाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीक में एक बार अवश्य भोग लगाएं, भोग ना मिटाएं, बहुत बड़ा काम होगा। बाबा को आकर्षित करता है भोग, लेकिन कैसा भोग बोलो, कैसा? जो बहुत बहुत प्यार में मग्न होकर योगयुक्त होकर बनाया गया हो, बनाया हो बच्चों के लिए और भोग लगाएं बाबा को, ठीक है, बाबा को ऑफर करा के खिलाया वो अच्छी बात है, लेकिन वो पहले ही बच्चों को भोग लग गया ना, संकल्प से ही लग गया था, वो ऊपर नहीं लगेगा। तो बड़ी सूक्ष्म गति है, लेकिन भोग एक बार अवश्य लगाएं। माताएं अपने घर में कोई भी एक दिन निश्चित कर लें, सोमवार कर लें, संडे कर लें, और बहुत स्वच्छता के साथ, जैसे माताएं जब व्रत रखती थी घरों में कैसा माहौल रहता था, किस किस ने रखा भक्ति में व्रत, कैसा लगता था उस दिन, बोलो कोई बोले, भूखा रहना और उपवास करना, क्या अंतर है? दोनों बात तो एक ही है, लेकिन भूखे रहने से परेशानी की फीलिंग, उपवास रखने से सुखदाई और खुशी की फीलिंग, केवल विचारों का अंतर है ना। बाबा को भोग लगाया करें, अपने घर में बाबा को बुलाओ, उसका वास हो जाएगा आपके घर में। और जहां भगवान का आगमन होने लगे क्या क्या हो जाएगा वहां बोलो? पीछे वाली बहने, सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी भी उसके साथ साथ आती है, भरपूर हो जाएंगे भंडारे आपके। इस तरह योग को जीवन बनाना है, योग युक्त जीवन। और भी कई श्रेष्ठ स्मृतियां हैं जो मुरलियों से हमें मिलती रहती हैं। मुझे बहुत प्रिय लगता है बाबा का साकार मुरली का महावाक, योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। याद करें, मैं तो श्रेष्ठ योगी चलता फिरता लाइट हाउस हूँ। अंग अंग से लाइट फैल रही है। अभी संडे की मुरली में भी था, तुम इतने प्रकाशमान हो, कितने बल्ब जलाएं? हजारों जलाएं तो भी कम, हम अपने प्रकाश को पहचाने। ये सूक्ष्म प्रकाश है ना, आगे जो दिखाई देने लगेगा, जब जय जयकार का समय आएगा, ये प्रकाश हमसे फैलता हुआ संसार की आत्माओं को दिखाई देने लगेगा। तो सभी मन को तैयार करें। आज जब ये महावाक्य सुना सभी ने कि 8 घंटे योग करने वाले ऐसी सेवा करेंगे, तो क्या संकल्प उठाता अपने लिए? हमारे बस का नहीं है, कईयों को उठा है, ये काम अपना थोड़ा ही है, कोई बड़े बड़े लोग ये काम करेंगे। फिर कई बाबा ने कह दिया जो विजयमाला वाले होंगे वही 8 घंटे योग करेंगे। कईयों ने सोच लिया हम तो विजयमाला वाले हैं ही नहीं, छोड़ो ये टेंशन। क्या क्या सोचा था कोई बताएगा? किसने सोचा हमें करना है, हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? वेरी गुड, करें अब आप सभी, क्योंकि हमारे संकल्पों में ही बहुत शक्ति है। अगर हमने सोच लिया अंदर में भी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो सोच लेते हैं जिसका हमें भी पता नहीं, तो हमारी शक्तियां डाउन हुई, बाबा का जो हमें साथ मिलना चाहिए वो मिस हो जाएगा। और अगर हम सोच लें जब भगवान कह रहा है तो मुझे उसकी श्रेष्ठ इच्छा को पूर्ण करना ही है, तो बाबा की शक्तियां हमसे तुरंत जुड़ गई, उसका सहयोग मिलने लगेगा। और वो हमें ऐसा योगी बनाने के लिए मदद देने लगेगा। प्लानिंग हमें करनी है, बिना प्लानिंग के ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये सत्य है कि थोड़ी आत्माओं को ये स्थिति मिलती है, लेकिन मेरे पास माताएं आती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। एक पीछे आई, मैंने पूछा, योग की बात कर रही थी, मैंने कहा कितना योग का चार्ट है? 4 घंटे है। कहा 4 घंटे क्यों, मैं तो 8-10 घंटे करती हूँ रोज। मैंने पूछा कैसे कैसे करती हो, तो जब उसने बताया तो वो सत्य था। कई तो ऐसे ही कह देते हैं बाबा ही साथ है, बाबा के बिना और हम किसे याद करेंगे? सारा दिन बच्चों को याद कर रहे हैं और कहेंगे ये बाबा के बिना हमारा है ही कौन, ये नहीं। लेकिन एक सुंदर प्लानिंग के साथ कि सवेरे 3:30 उठे, 4 उठे और 8 बजे तक का हमारा टाइम बाबा के लिए है। मुरली सुनने आ गए, 1 घंटा दें उसमें, और बहुत सुंदर स्थिति में बैठ के मुरली सुने, वो भी योग में काउंट हो जाएगा। मान लो आप इस अभ्यास में बैठे हैं, मैं आत्मा यहाँ बैठकर कानों के द्वारा भगवान को सुन रही हूँ, योग हो गया। सामने वाली जो टीचर है वो भी आत्मा मुख के द्वारा बोल रही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। कभी ऐसा अभ्यास कर लें ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, हम मुरली सुन रहे हैं। कभी मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस हूँ, मुरली सुन रहा हूँ। तो ऐसे अभ्यास में मुरली सुनना योग युक्त मुरली हो गई। इससे डबल फायदा होगा, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं वो सहज रूप से जीवन में धारण हो जाएगा। और जब हम मुरली सुन के उठेंगे कैसा होगा मन? एक अतिंद्रिय सुख से भरा हुआ। जैसे अमृत पान करके आ गए हैं मुरली से, भगवान की बांसुरी बजी थी, मन म्यूर नाच उठा है, वो डांस करके आ गए हैं मुरली से, ऐसी गुड ग्रेट फीलिंग होने लगेगी। तो एक सुंदर प्लानिंग करें, शाम को भी कार्य पूरा हुआ, संकल्प कर दें अभी से, 6 बजे काम पूरा हुआ, 6:30 पूरा हुआ, 7 पूरा हुआ, अब सोने तक का टाइम बाबा के लिए। न व्यर्थ सुनना, न व्हाट्सएप पर बहुत, न मोबाइल पर बहुत, ये भी तो माया है ना। जिनको योगी बनना हो वो इन इस माया से भी ऊपर रहेंगे जरा। बस काम की चीजें देख ली, जरूरी होती है कुछ चीजें हमें सिखाती हैं, उसमें हमने 15-20 मिनट दे दिया सवेरे से हम, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं रात को जाग के व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं जो डाउनलोड कर लिया था फ्री जियो में, वो नहीं, वो नहीं। अब उससे बचेंगे, ये बड़ी माया है, क्योंकि इससे मन भटकता है। ये रावण ने एक ऐसा बम डाला है सबके घरों में जो दिखाई भी नहीं देता, कि लो तुम्हारे अंदर ही डाल देता हूँ, अब अंदर ही अंदर विस्फोट करता रहेगा और तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा। तो विज्ञान के साधन वरदान भी हैं, लेकिन हम अपने लिए इनको श्राप न बनने दें, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे लिए वरदान हैं। और बाबा यही कहते आए थे कि विज्ञान के सारे साधन स्थापना के कार्य में यूज होंगे, तो हमें इनको काम में यूज करना है, स्थापना को बढ़ाने में, आत्माओं की पालना करने में यूज करना है। तो सभी अपने मन में संकल्प करें, हमें बाबा की इन श्रेष्ठ आशाओं को पूर्ण करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कौन जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान है? हम वो हैं जिनके पास ईश्वरीय बुद्धि है, हम वो हैं जिन्हें योग का सरल मार्ग पता है, कोई ढूंढना नहीं है, ये सत्य है या ये करूं या ये, इतना सब कुछ जिनके पास है, वो यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो कल सवेरे उठते ही पहला संकल्प करेंगे, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई, यहाँ पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए, यहाँ से शुरू करेंगे अपनी दिनचर्या। ध्यान दें, पहले संकल्प को पकड़ना है। पहला संकल्प इधर उधर गया तो 10-20 संकल्प उसके पीछे लगकर वेस्ट हो जाएंगे। पहला सुंदर संकल्प हमने रच लिया मन में, तो एक सुंदर संकल्प का फ्लो मन में चलेगा, हम अच्छे संकल्प क्रिएट करेंगे और सवेरे का समय आत्मा को चार्ज करने वाला हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं सुविच्छाओं के साथ आज सोएंगे। ओम शांति। चलो इसी संकल्प से योग करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा इस देह में अवतरित, चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने के लिए।
प्रभु का ध्यान।